देव्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियो लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे यार ज्ञान पाप कर्म गेद्दु शुद्धवागिदे अमितवाद शक्तियिंद सकल तत्व तिळिदिदे लोकदल्लि वीतराग पूज्य पदवी अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जैन धर्म भव्य जीवों को स्वयं के कल्याण का एक मार्ग है। यह बाहरी धर्म नहीं है। ये धर्म आत्मा के लिए है, आत्मा के उद्धार के लिए है। चिंतन करने वालों के लिए है। स्वयं ही चिंतन कर स्वयं ही उस मार्ग पर चलने वालों के लिए है। इसलिए इसमें पर का कोई हिस्सा नहीं होता। पर इसमें किसी भी प्रकार से हमें कुछ देने लेने वाले नहीं होते। हम ही अपने को देते हैं और हम ही अपने से लेते हैं। स्वयं से लेना और स्वयं से देना, ये दोनों क्रिया जहाँ होती हैं वहाँ पर जैन धर्म का जन्म होता है। जन्म कौन देंगे? दूसरा कोई हमें जन्म दे सकता है क्या? नहीं, हम ही जन्म देंगे, हम ही जन्म लेंगे। धर्म की अपेक्षा से यदि हम विचार करते हैं तो हमारा जन्म अभी तक नहीं हुआ। आत्मा जन्म धर्म की अपेक्षा से जन्म ले, यह महत्वपूर्ण बात है ना। जन्म की अपेक्षा से धर्म ले, अधर्म की अपेक्षा से तो जन्म बहुत बार हुआ है। हमारे विगत के अनंतानंत भवों में जो जन्म रहा है वो अधर्म के द्वारा ही हुआ है। जब देखो तब अधर्म साथ था, धर्म नहीं था इसका मतलब क्या क्या था? अधर्म ही था, क्योंकि ये दोनों पर्याय हैं। पर्याय धर्म भी एक पर्याय है और अधर्म भी एक पर्याय ही है। अधर्म पर्याय का अभाव होने पर धर्म पर्याय की उत्पत्ति होती है। अंधेरा का अभाव होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अनादि से अपने पास क्या था? अंधेरा था। अब क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश की ओर अपनी आत्मा को हमें स्वयं ले जाना है। आत्मा से ही हमें कहना है, हे आत्मा, माम प्रकाशम गमय। हे आत्मा, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। माम प्रकाशम गमय, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार कहाँ है? आत्मा में है क्या बाहर है? आत्मा में ही अंधकार है। इस अंधकार को हमें दूर करना है क्या? नहीं। कौन पूछेगा इसको? आत्मा ही आत्मा को पूछेगा या दूसरा कोई पूछे? आत्मा को आत्मा ही पूछे तब काम बनेगा। यहां तो दूसरे को पूछना पड़ रहा है और दूसरे को पूछने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे के द्वारा पूछने पर फायदा भी क्या है? दूसरा उपदेश दे सकता है, उपदेश के वचनों को सुन करके हमको ही हमसे पूछना पड़ेगा। तुमने जो भगवान की वाणी सुनी, हे आत्मा, कैसा लगा? उस कौन पूछेगा? आत्मा ही आत्मा को पूछेगा कैसा लगा। अभी तक तुमने क्या किया? उपदेश में तो ऐसा आया, तुमको क्या करना है अभी? ये कौन किसको पूछे? आत्मा आत्मा को पूछे। और जब आत्मा आत्मा को पूछना प्रारंभ करेगा, उस दिन आत्मा जग जाएगा। ऐसा एक बार भी नहीं पूछा। हमें बाहर के लोग ही जगाने वाले मिलते रहे, परंतु भीतर जो जगा सकता है जिसको, वो तो सोया हुआ ही रहा। आत्मा आत्मा को जगा सकता है, दूसरा कोई आत्मा को जगा नहीं सकता। जगाओ दूसरों को नहीं, जगाओ अपने आप को। अपने द्वारा पूछ पूछ करके परमिशन ले लो। आत्मा ही आत्मा से परमिशन लेकर आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का आत्मा के लिए स्वयं आत्मा को जो चाहिए उसके लिए वह आत्मा ही पुरुषार्थ करेगा। षट कारकों का सद्भाव स्वयं में, आत्मा स्वयं, आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा का जो सुख है आत्मा में वह पाएगा, स्वयं के द्वारा स्वयं ही पाएगा। ये षटकारक कहलाते और इन षटकारकों में पुरुषार्थ हमारा ही होता है। हमारा, हमको, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारा, हम में होता है। और जब यह होता है आत्मा स्वयं आत्मा को जगाना प्रारंभ कर देता है तो एक बार आवाज देता है, हे आत्मा, ये संबोधन वाचक हो गया, हे आत्मा तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या कारण करना था और क्या कर रहा है। इस प्रकार संबोधन दे करके जगाने वाला भी आत्मा ही है। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सात विभक्तियां हैं और संबोधन एक अलग से है। संबोधन जगाने का माध्यम है, हे ऐसा जुड़ता है उसमें, शेष विभक्तियों में हे शब्द नहीं जुड़ेगा। हे आत्मा कहते ही संबोधन वाचक शब्द का प्रयोग हुआ। हे आत्मा तुम स्वयं, तुमको, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम में पाना क्या है, जानना और स्वयं पाना। इतना जगा करके छोड़ना हमारा कर्तव्य। एक बार जगा दो और छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक रास्ते पर लग जाएगा। खुद नहीं जगाएंगे तो जगने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा को इतनी गहरी नींद है कि अनादिकालीन नींद है ये, बीच में एक बार भी जगा नहीं, इतना सोया हुआ है। यानी ये है कि कुंभकर्ण के नींद से भी ज्यादा नींद है, ऐसा सोया हुआ है। ऐसे सोई हुई आत्मा को जगाने का उपाय क्या है? स्वयं को जगना और स्वयं को ही जगाना। एक बार जगना पड़ेगा, जगने के पश्चात फिर अध्ययन भी करना पड़ेगा, जिसको जगाया है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उस वस्तु के संबंध में अध्ययन करना पड़ेगा। आत्मा एक वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, उस आत्म तत्व का बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। बाहर का कुछ भी न करे तो चलेगा, लेकिन भीतर का एक बार करना बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, यही करना है। कितनी बार हमने कहा आत्मा को जगाने का मतलब क्या? आत्मा करने की आदत वाला है, इस आदत को छुड़ाना। करते 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 क्या कर रहे हो, कहां भाग रहे हो, क्या करके क्या लेन देन है, किससे क्या लेन देन है, क्यों कर रहे हो? कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठना है। जो बिल्कुल आराम से बैठता है, कुछ भी नहीं करता है, वही मोक्ष जाता है। और जो कुछ करने के लिए जाता है, वो करने वाला तो चतुर गति में से एक गति में न कहीं जन्म लेता है। करने वाले को आयु का बंध होता है, जो कुछ भी नहीं करता उसको किसी भी आयु का बंध नहीं होता। न नरकायु का, न तिर्यंचायु का, न मनुष्यायु का, न देवायु का, ये चारों प्रकार के आयु में से एक आयु का जो बंध होता है, यह किसको होता है? जो कुछ न कुछ कर रहा है। और कर रहा है तो दो ही प्रकार से कुछ न कुछ कर रहा है, या तो अशुभ भावों से अशुभ को कर रहा है, या तो शुभ भावों से शुभ को कर रहा है। और ये दोनों ही भाव आयु बंध के कारण हैं। शुभ भाव से मनुष्य गति का, देव गति का बंध होता है, अशुभ भाव से तिर्यंच गति का और नरक गति का बंध होता है, और आयु का भी इन्हीं भावों से बंध होता है। अशुभ से बचने के लिए वृत्ति बनो, वृत्ति बनो, वृत्ति बनो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, पंच पाप छोड़ो, ये बताया जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अशुभ भावों की उत्पत्ति में कारण बनकर, पाप कर्म के बंध में कारण बनते हैं। अशुभ भावों को छोड़ना हो तो अशुभ पंच पापों को छोड़ो। उसमें पंच पापों में प्रधान पाप है परिग्रह, परिग्रह, परिग्रह। अशुभ भावोत्पत्ति का मूल कारण परिग्रह है। मूल कारण परिग्रह है, यह महापाप है, और यही जीव को समझ में अनादिकाल से नहीं आया। परिग्रह को पाप कहते ही वह दुखी होता है। नहीं, दुखी होता है। जिसको राग है उसको दुख होता है कि सुख? जिसको परिग्रह के प्रति राग हो और उसको ये परिग्रह पाप है कहते ही यूं देखने लगता है, ये क्या बोल रहा है। रागी को दुख होता है और धर्म के अनुरागी को सुख मिलता है। परिग्रह पाप है, इसको छोड़ो, इस प्रकार का एक वाक्य हमने बोल दिया। इस वाक्य को सुनकर कितने ही लोगों के मन में तरंगे उठती, मन में तरंग उठती, महाराज क्या बोल रहे हैं? जब देखें तभी परिग्रह, परिग्रह, परिग्रह कहते हैं। कुछ परिग्रह संपादन के बारे में तो बोलो नया। कुछ नया तो बोलो। परिग्रह छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, यही बोलते रहते हैं। कुछ नया बोलो। और मैं नया बोलूं तो वो नया नहीं हो सकता। मैं जो बोल रहा हूं वही नया है, मैं जो बोल रहा हूं वही नया है। परिग्रह ग्रहण करो ये कभी नहीं बोल सकता मैं। जब भी मुख से निकलेगा यही निकलेगा, परिग्रह छोड़ो। और छोड़ने के बाद क्या करना? तो छोड़ना तो पहला कर्तव्य है, क्या करना तो बाद में बता दूंगा। छोड़ना तो प्रथम कर्तव्य है, छोड़ो। छोड़ने के बाद क्या करना? कुछ नहीं करना, यही करना। छोड़ने के बाद फिर क्या करोगे? करने को कुछ बचा क्या? तीर्थंकर भगवान परिग्रह छोड़े, छोड़ते समय कुछ तो किया उन्होंने, किया क्या? किया, छोड़ने का ही काम किया। तो छोड़ने का काम करना भी कुछ करना ही हुआ। समझ में आ रही बात? परिग्रह मैं छोड़ रहा हूं इस विकल्प के साथ, छोड़ना भी कुछ करना हुआ क्या? नहीं, इतना भी नहीं करना। महाराज ये अच्छा लगता है, इतना भी नहीं करना है तो हम जो कुछ इकट्ठा किए हैं इसको ऐसे ही रखेंगे, संभाल के रखेंगे। तो संभाल के रखोगे तो संभालने के लिए भी कुछ करना पड़ता है ना, तो वो भी नहीं करना। न संभालना न त्यागना। क्या बोला? न संभालना न त्यागना। फिर क्या करना? जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठना। बैठने पर ही मोक्ष मिलता है, इधर उधर चलेंगे फिरेंगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। चलता कौन है? जो कुछ ना कुछ करने का विकल्प रखता है वो चलता है, और जिसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं वो चलता नहीं। बाहर में कुछ करने धरने का रहा ही नहीं जिसके जीवन में, वो कुछ नहीं करता। क्या करता है? बस ऐसा दिखता है वो हमेशा, दुनिया को नहीं देखता। वीतरागी भगवान की दृष्टि नासिका पर क्यों? चिंतन करो, विचार करो। भगवान की पलके झपकती नहीं। कल आया था दोपहर को, ऐसे ऐसे नहीं होते, और भगवान चलते समय सामने भी नहीं देखते। उनकी दृष्टि ऐसी, चलते समय ऐसी, उठते समय ऐसी, बैठे ऐसे, पुतलियां हिलती नहीं, ये पलके झपकती नहीं। नासिका दृष्टि, चलते समय में, विहार करते समय में भी नासिका दृष्टि। क्यों? आकाश से चल रहे हैं, चार हाथ दे करके चलना नहीं पड़ रहा है, कोई इरिया समिति की जरूरत नहीं। जहां पाद विक्षेप करेंगे वहां हिंसा होने वाली नहीं है, सीधा चल रहे हैं, एक 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 पांव आगे बढ़ा रहे हैं, तो नासिका दृष्टि है। कोई सामने से आकर के नमोस्तु कर गया, उधर भी नहीं देखते, सीधा जाते हैं अपने भगवान। वो अपने भगवान है, वे आपके भगवान नहीं, वे अपने भगवान है। वो सीधा चलते हैं, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। तो द्वेष है क्या? किसी से नाराज है क्या? दुनिया से नाराज होकर के दीक्षा ली है क्या, इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? वो लगता है संसारी जीवों को कि तो सबसे नाराज हैं, एक को भी आशीर्वाद नहीं देते। दीक्षा ले ली, उनका संकल्प है कि दीक्षा लेने के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यही करूंगा, उनका संकल्प है। आशीर्वाद देना ये भी तो कुछ करना हुआ, इतना भी नहीं करूंगा। इसमें भी कर्मों का आश्रव है और बंध है, और भगवान आश्रव और बंध के मार्ग को उचित नहीं समझते। लेकिन संसारी प्राणी को भगवान का जब चलते चलते आशीर्वाद नहीं मिलता, मुनि अवस्था में चलते चलते भी वो अगर आशीर्वाद नहीं देते हैं तो कई प्रकार के तरंगे मन में उठती हैं। किसी को अच्छी तरंगे भी उठ सकती हैं और किसी को बुरी तरंगे भी उठ सकती हैं। कोई कहता है भगवान को इतना अच्छी भक्ति और श्रद्धा से हमने नमस्कार किया, आशीर्वाद तक नहीं दिया, भगवान ऐसे ही चले गए, कैसे भगवान? शायद मेरे से नाराज हैं इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसा भी सोच सकता है कि नहीं। तो आशीर्वाद जो नहीं देते हैं वो गलत हैं क्या, जो सोच रहा है उनकी गलती है? हाँ, सोच ही गलत है, क्योंकि भगवान को समझे ही नहीं कि वो उन्होंने दीक्षा किस उद्देश्य लिया। इसको चिंतन करने की शक्ति उनके पास नहीं है, इसलिए उल्टा सोचने लगता है। भगवान कहते हैं मैं आशीर्वाद लेने के लिए दीक्षा हमने नहीं ली है, मैंने तो मेरे लिए दीक्षा ली है। दुनिया में किसी को आशीर्वाद देने के लिए हमने दीक्षा नहीं ली है, मैं अपने को पहचानने के लिए, अपने को पाने के लिए, अपने में रहने के लिए दीक्षा ली है, इसलिए मेरी दृष्टि को तो देखो एक बार क्यों ली है, मैं कैसा बैठा हूं नासिका दृष्टि से, इसी से समझो कि मैं क्या चाहता हूं, मैं स्वयं को चाहता हूं कि पर को चाहता हूं। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं वीतराग मुद्रा से। उनकी वीतराग मुद्रा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये किसी को नहीं चाहते परंतु सभी इनको चाहते। वीतरागी भगवान को सारा जगत चाह रहा है लेकिन वीतरागी भगवान किसी को भी नहीं चाहते। इन्हीं को कहते हैं असली भगवान। असली भगवान की पहचान क्या है? जो दुनिया को देखते ही नहीं, दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं रखते, वो भगवान हमारे असली भगवान हैं। उनका दर्शन एक बार भी कर लो तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कटते हैं। असली भगवान का दर्शन करने से भव भव के पाप कर्म कटेंगे क्या, बचेंगे? अंदर कटेंगे। वीतरागी का दर्शन करना बहुत बड़ा सुकृत भाग्य पूर्व का इकट्ठा होकर के जब आता है तब तो ऐसे भगवंतों का दर्शन मिलता है, ऐसे गुरुओं का, ऐसे भगवंतों का, ऐसे जिनवानी शास्त्र के प्रवचनों का उपदेश मिलता है, अवसर मिलता है, भाग्य मिलता है। संसारी जीव राग में रंगा हुआ है अनादिकाल से, राग में सोया हुआ है। उसकी सोच जब कभी भी देखो राग की दृष्टि से ही सोच रही थी। शराब पीने के बाद व्यक्ति जैसा होता है ना, उसकी सोच जब तक नशा नहीं उतरता तब तक वो अपने रंग में ही रहता है, वो अपने रंग में रंगा रहता है। उसकी बोली को देख लो, पहचान लोगे, एक साथ एकदम पहचान लोगे। शराबी को देखकर कोई भी व्यक्ति ये शराब पिया है तुरंत समझ में क्यों आता है, क्योंकि वो अपने रंग में रंगा हुआ होता है। अपने रंग में रंगा हुआ होता ऐसे ही मुनियों को, संसारी जीवों को देख करके वो तुरंत पहचान जाते हैं उनकी भाषा को। वो हमारे साथ बोलना बोलने के लिए क्यों आया, तो कहते हैं वो राग में रंगा हुआ है इसलिए बोलने के लिए आया। और मुनि महाराज किसी के यहां जाते नहीं बात करने के लिए, जाते किसी से कोई काम ही नहीं रहा। जिसको किसी से कुछ काम नहीं रहा वे सच्चे गुरु, दुनिया से निष्प्रह निरीह, किसी से राग किसी से द्वेष नहीं, किसी से कोई काम नहीं, वे सच्चे गुरु का लक्षण। भगवान इससे ऊंचे हैं लेकिन गुरु इससे नीचे रह करके भी दुनिया से कोई काम जिसको नहीं है वो सच्चे गुरु। और दुनिया को देखते तो हैं वो, क्यों देखना पड़ता है, चलेंगे तो ईर्या समिति से चलना पड़ेगा, चार हाथ आगे तो देखना पड़ेगा, नासिका दृष्टि यहाँ हट जाती है। मुझे पर जीवों की रक्षा करना है, ये विकल्प आते ही यहाँ की दृष्टि वहां चली जाएगी। नासिका दृष्टि गुरु की हटती है, लेकिन भगवान की नासिका दृष्टि हटती नहीं, वो ऐसे ही रहते हैं। मंदिर में मूर्ति देखी है ना, वो असली दृष्टि उनकी, और गुरु की असली दृष्टि क्या है, वो यहां भी रखें और यहां भी रखें, ये असली दृष्टि है। गुरु यहां रख करके चले तो गिर जाएंगे, पर का भी घात होगा, सो का भी घात होगा। गुरु दयालु हैं, गुरु महाव्रती हैं, अहिंसा महाव्रत को धारण करने के बाद वो इधर उधर देख करके नहीं चलेंगे, नीचे देख देख करके चलेंगे, ईर्या समिति से चलेंगे, जीवों की रक्षा करते हुए चलेंगे। गुरु में और भगवान में इतना ही फर्क कि भगवान की नासिका दृष्टि नहीं हटती, गुरु की हट सकती है। गुरु दयालु हैं, भगवान दयालु भी नहीं। यही फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। और एक दिन वही गुरु भगवान बनने वाले, वही गुरु भगवान बनने वाले। गुरु की दृष्टि दो है, नासिका दृष्टि और ईर्या समिति की दृष्टि। और फिर कोई शिष्य आ गए, हे गुरुवर मैं कल्याण चाहता हूं, कल्याण का मार्ग दर्शा दो, तो शिष्य के तरफ दृष्टि करनी पड़ेगी। गुरु दयालु हैं, शिष्य की ओर भी दृष्टि ले जा सकता है। उनकी दृष्टि दो पर ही जाती है, जीव दया के ऊपर और जिस पर उपकार करना है उस पर, दो ही जगह दृष्टि जाती है। फालतू जीवों पर दृष्टि नहीं जाती, और यदि गई तो वीतराग रहेगी, दृष्टि में वीतरागता मौजूद रहेगी। गई तो बहुत दूर तक चली गई, लौट करके आ गई, चिंतन करके आ गई दृष्टि। तत्व चिंतन करते समय हर वस्तु को देख करके तत्व चिंतन होता है। गुरु दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन तत्व दृष्टि के, तत्व के चिंतन की दृष्टि कौन से देखते। गुरु ने आकाश को देखा, क्यों देखा होगा, कुछ चिंतन जरूर है भीतर। गुरु ने इधर उधर चारों दिशाओं में देखा, क्यों देखा होगा, कुछ न कुछ रहस्य है। तो वहां तत्व चिंतन है और कुछ नहीं। तत्व चिंतन को छोड़कर अन्य उद्देश्य से गुरु देख ही नहीं सकते। रागी जीव जमीन देख करके चलता है, जमीन पर कुछ धन वगैरह गिरा हो इस दृष्टि से चलता है, उठा सके। वीतरागी गुरु जमीन को देख करके चलते हैं, धन संपत्ति वैभव रास्ते पर पड़ा हुआ है उस पर पैर दे करके जाएंगे, रास्ता नहीं हो तो, बहुत गिरा है बहुत गिरा है उस पर निकल जाएंगे, लेकिन उसको उठाने की दृष्टि से कभी भी वो देख नहीं सकते। उसको लेकर के मैं करूं क्या, इसी के कारण से तो मैं संसारी बन गया, मुझे कर्म का जो बंध हुआ ये इसी के कारण से हुआ, ये जड़ वस्तु है, पर वस्तु है, ये पर वैभव है, बाहरी वैभव है, मेरी वैभव मुझे मिल गई है तो ये बाहरी वैभव को लेकर के मैं करूं क्या? वैभव को भी वो नहीं मिल पाया, अंदर का वैभव। प्रयत्न चल रहा है कि अंदर का भी वैभव है, दरवाजा बंद है लेकिन बाहर गुरु बता रहे हैं कि तुम्हारे दरवाजे के अंदर बहुत वैभव है, खोलने का प्रयत्न चल रहा है। असल में है क्या मेरे घर में भी? दरवाजा खोलने का प्रयत्न हो रहा है, जल्दी हो, शुभाशीष। आत्मा का कल्याण मोक्ष मार्ग में करना हो तो सबको भूल के आओ। क्या भूलना? जिसको हमने अनादि से आत्म सुख के लिए वैभव समझा है उसको भूल के आओ, वो विपरीत श्रद्धा है, मिथ्या धारणा है, उल्टी धारणा है, उल्टा चिंतन है, उल्टी समझ है, उल्टी दौड़ धूप है, उल्टी क्रियाएं। छोड़ो उसको, कितने दिन पीछे पड़ोगे? छोड़ो का मतलब सब छोड़ करके मुनि बनो ये भी नहीं कह रहा हूं ना। दृष्टि तो बनाओ कि कम से कम धर्म करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, सामायिक करने के लिए, चिंतन करने के लिए, जब इन धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों में लगे रहोगे उतने समय के लिए तो कम से कम भूल जाओ उसको। सामायिक कर रहे हैं तो शुचाप करके तो सामायिक करो। इतना भी नहीं होता है क्या? कि सामायिक में भी विकल्प रखोगे? अंदर के वैभव को पाने के लिए कोशिश चल रहा है और बाहर शुचाप करके रखा नहीं है, वो बजने लगा तो ये वैभव छोड़कर उस वैभव पर जाना पड़ेगा। प्रवचन सुन रहे हैं तो कम से कम स्विच ऑफ करके तो रखो, नहीं तो मन उधर दौड़ेगा। इस वैभव की आशा से यहां आए और उस वैभव के पीछे और स्विच ऑफ नहीं किया है तो उधर विकल्प दौड़ेगा। सब भूल के आना। मंदिर जा रहे हैं सब भूल के जाओ, मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। प्रवचन सुनने आ रहे हैं सभी भूल जाओ, निर्विकल्प होकर के, जैसे बालक होता है सब कुछ भूलता है वो, उसको दुनिया मालूम नहीं क्या है, अपने आप में रंगा रहता है, वो अपने खेल में मस्त रहता है, उसको तो एक खिलौना मिल गए तो खत्म बात। आपके हाथ में भी वही खिलौना हमने दिया है जो आप चाहते थे। अंदर के वैभव को संकेत करके बताया है कि ये दरवाजा खोलो, यहां पर बहुत माल है, संकेत दे दिया है। और खिलौने के रूप में आपके हाथ में यदि कुछ दिया है तो वो व्रत दिया है। कैसा व्रत? संकल्प। कैसा संकल्प? जब भी प्रवचन सुनने के लिए आओगे तो सब कुछ भूल करके आओगे, स्विच अप करके आओगे, यहां आके बैठोगे, ये हो गया हमारा खिलौना। आपको तो रंग जाना चाहिए, इसमें रंगना चाहिए, इसमें आनंद आना चाहिए। ये आनंद आ गया ना तो दरवाजा खुलेगा, माल दिखेगा। बाहरी माल कमाल, कमाल का काम हो गया, अंदरी अंदर के माल को इस माल ने देखने तक नहीं दिया। इस खिलौने में भी कितनी शक्ति है देखो तो। इस बाहर के वैभव ने हमको कितने रंगा दिया, कितना जादू किया, कैसा बांध के रखा, इसमें है क्या? कुछ भी तो नहीं है। भूसे को दिन भर 24 घंटा भी कूटो, एक दाना भी नहीं निकलता। इस बाहरी वैभव में सुख कहाँ है? है नहीं। सुखाभास है, दुख का कारण है। शुरू शुरू में जरा सा लगता है, तलवार के ऊपर रहने वाले शहद को जब चाटते हैं मीठा तो लगा, लेकिन पश्चात क्या हुआ? जीव कट गई। अब दूसरे दिन उसको खा भी नहीं सकेंगे, चाट भी नहीं सकेंगे, एक ही दिन चाटा। ऐसा सुख है, इस सुख से हमें विरक्त होना चाहिए, विरक्ति के लक्षण फूटना चाहिए भीतर से। इसमें कुछ भी नहीं है, विरक्ति के लक्षण फूटना चाहिए। जितना जितना विरक्ति, जितनी जितनी विरक्ति अधिक होती जाएगी उतना उतना आत्मिक सुख भी बढ़ता जाएगा। शांति, संतोष, निर्विकारता, निर्मल परिणाम, उनका विकास होगा। कल जो शेष रह गया था उसको बता दिया। कल यही नहीं बताया था, वो शेष रह गया था, और आज का जो शेष और रह गया है कल देखेंगे। आशीर्वाद दूं क्या? नहीं, अब आशीर्वाद नहीं चाहिए महाराज, हम समझ गए। अब शिष्य का यदि कल्याण होता है तो आशीर्वाद मिलता है, मिल गया, बहुत मिल गया क्या, कम मिल गया? हम तो ये चाहते हैं, आशीर्वाद चाहने वालों से हम ये चाहते हैं कि वो आशीर्वाद लेने के लिए एक ही बार आ जाएं, और पूरे जितने बोरी भर के लेना हो ट्रक गट एक ही बार ले जाएं, बार बार न ले, ताकि हम ऐसे बैठने वाले हैं तुम जगाओगे, डिस्टर्ब करोगे। हमको बार बार देना न पड़े, ये हमारी इच्छा रहती। क्यों? एक बार देने से मुझे बंद है। किसका बंद है? शुभ का बंद है, और ये शुभ का बंद भी हम नहीं चाहते। और एक बार बंद होता है, होने दो, बार बार नहीं होने दो। तो एक बार ले जाओ, जितना चाहिए, जहां से आते हैं आओ और माल भर करके ले जाओ आशीर्वाद का, और उसको काम में ले लो। किस किस के लिए आशीर्वाद चाहिए एक साथ ले लो, डायरी भर के लाना, महाराज ये काम करना, ये काम करना, ये भी करना है, ये भी करना है, उन सब के लिए एक साथ आशीर्वाद देता हूँ, अलग 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 अलग, एक ही दिन है, लेकिन एक ही दिन देऊंगा, एक दिन। बार बार मत सताओ, बार बार मत जगाओ हमको, बार बार आकर्षित मत करो। हम अपने में स्थित रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो अपने को बंद से बचने के लिए कुछ नहीं करना, ये मार्ग पकड़ चुके हैं। और कुछ हमको करने पड़ने लग जाए तो नुकसान किसका, हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान बहुत है, इसलिए एक बार आशीर्वाद ले लो, भरपूर ले लो, जो जो काम करना है उन सबको लिख के ले आओ, भूल जाते हो और दूसरे दिन पुनः आते, महाराज कल इसका आशीर्वाद नहीं लिया था, अब इसका भी दे दो। तो जोहरी जो होता है ना, बार बार दुकान नहीं खोलता, फिक्स टाइम, और हफ्ते में एक बार, केवल हफ्ते में एक बार का व्यापार पर्याप्त है, संतोषी है, व्यापार हो या ना हो, एक दिन ही हफ्ते में दुकान खोलेंगे, क्योंकि उसमें नुकसान है, दुकान करना ही नुकसान समझ रहे हो, और नुकसान का दुकान दूसरे के फायदे के लिए है। किसी गली में दुकान ही ना हो तो लोग परेशान रहते हैं, और लोगों की परेशानी को देख करके एक ने दुकान खोली तो उपकार किसका हो रहा है उस गली में? गली वालों को फायदा हो रहा है, गली वालों को फायदा है, लेकिन खोलने वालों को कितना नुकसान है? भरोसा है क्या कि उस दिन फायदा हो जाए या नुकसान हो जाए? गली वाले भी बहुत होशियार रहते हैं, खोटे नोट देते हैं और माल ले जाते हैं, एक दिन ऐसी घटना घट गई तो वो क्या करेगा बेचारा? मोक्ष मार्ग बहुत 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 ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, उस ऊंचाई को साधने वाले साधु भी आज पंचम काल में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा भाग्य है, उनका दर्शन भी हमारा भाग्य है। ऐसे साधु कब मिल सकते हैं? छठे काल में तो 21,000 वर्ष तक नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, चाहिए हो तो भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और छठे काल में क्या पर में सोए हुए, संसार में सोए हुए लोग नहीं मिलेंगे? वे तो हर काल में हैं, छों काल में है, उत्सर्पिणी में भी रहते हैं वो, और अवसर्पिणी में भी रहते हैं, एक सेकंद भी खाली नहीं होता इन लोगों से, उत्सर्पिणी काल का और अवसर्पिणी काल का, प्रत्येक समय में ये निरंतर रहते, लेकिन वीतरागी साधु निरंतर नहीं रहते। हीरा हीरा है, निरंतर हर जगह हर क्षेत्र में खोदने पर हीरा नहीं निकलता, मिट्टी पत्थर तो हर जगह निकलते हैं। वीतरागता के साधक साधु हर जगह नहीं निकलेंगे, कहीं एक आध जगह, कभी विदेह क्षेत्र में तो कभी एक आध बार भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में निरंतर मिलेंगे, भरत क्षेत्र में तो इनकी निरंतरता नहीं है, क्योंकि 18 कोटा कोटि सागर तक, 20 कोटा कोटि में से 18 कोटा कोटि सागर तक भोग भूमि का काल, एक भी जीव वहां वीतरागी नहीं है। स्त्री पुरुष तिरेंच तिरेंचनी चार ही प्रकार के जीव हैं, संगी पंचेंद्री हैं, उनमें से एक भी वीतरागी नहीं है, सभी असंयमी, असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत मिथ्या दृष्टि, दो ही प्रकार के जीव, क्वालिटी दो ही, तीसरी क्वालिटी वीतरागता की वहां है नहीं। मिलेच्छखंड में, भोग भूमि में जितने अच्छे लोग मिलते हैं, मिलेच्छखंड में उतने मिलेंगे ही नहीं, वहां तो एक ही गुणस्थान, सदा त्रैकालिक सिद्धांत नियम, नियम ही है कि जो भोग भूमि में मिलेच्छखंड में जन्म लेंगे वो उनका गुणस्थान एक ही, सम्यक दृष्टि भी नहीं मिलेंगे, असंयत सम्यक दृष्टि। तो भोग भूमि अच्छी क्या मलेच्छ खंड अच्छा है? मलेच्छ खंड भोग भूमि से कर्म भूमि में हो करके भी वो कर्म भूमि है, मलेच्छ खंड भी कर्म भूमि, कर्म भूमि में हो करके भी वो खंड, वो एक भाग, वो एक क्षेत्र ऐसा है कि कोई काम का नहीं। करते भोग भूमि में करते हैं सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, लेकिन वीतरागता क्यों नहीं आती है? वीतरागता की प्रति श्रद्धा वहां है, परंतु स्वयं अपनी आत्मा को वीतराग बनाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक वे अनंतानुबंधी को ही दबा सकते हैं। और राग की उत्पत्ति में कारणीभूत अप्रत्याख्यानावरणी कर्म को वे जीत नहीं सकते, क्योंकि उनका शरीर संयम धारण करने लायक नहीं है। अगर संयम आ गया तो वहां से मोक्ष भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वज्रषभ नाराज सोनन है वहां। वीतरागता नहीं आती है इसलिए मोक्ष नहीं जाते। भोग भूमि के जीवों को वीतरागता पैदा नहीं हो सकती इसलिए मोक्ष नहीं जाते हो। अधिक से अधिक चौथे गुणस्थान तक आएंगे, चौथे गुणस्थान में सम्यक्तु के परिणाम तो सुरक्षित रहेंगे, किंतु त्याग के भाव जगा नहीं सकते। चाहे आयु आगामी आयु का बंद किया हो नहीं किया हो, नहीं जाते। चारण ऋद्धि मुनि महाराज जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता आगम में। भोग भूमि में उपदेश देंगे तो फिर आहार भी लेना पड़ेगा। उपदेश यहां दें और आहार करने के लिए वहां जाएं, ये किसने कहा? कुछ नहीं करने के लिए वो आते हैं उधर क्यों जाएंगे? मुनि महाराज फालतू जगह नहीं जाते, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले देव वहां पर जब जाते हैं तो मुनियों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए जाने की आवश्यकता क्या है? संयम धारण करने वाले हों तो जा भी सकते थे, क्योंकि देव लोग भोग भूमि के जीवों को संयम तो दे नहीं सकते। मुनि दीक्षा देंगे क्या? श्रावक श्रावक को मुनि दीक्षा देता है? कोई भोग भूमि का जीव वीतरागी बनना चाहता हो, बनने की शक्ति वाला हो, तो मुनि महाराजों का आवागमन शुरू रहता। मुनि महाराज क्यों जाएंगे वहां? क्या काम है? और व्यर्थ तो जाते नहीं, जाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो क्यों जाएंगे? देवलोक जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनके कोई होंगे संबंधी वहां, पूर्व भव का कोई जीव पैदा हुआ होगा वहां, उसको संबोधने के लिए चले जाएं, जा सकते हैं। असंख्यात जो द्वीप हैं, जो त्रियंच जीव हैं संगी पंचेंद्री भोग भूमि के, वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव कोई साथी वहां पर जन्मा और एक विदेह क्षेत्र में जन्मा, एक देवगति में जन्मा, तो वह देव संबोधने के लिए अपने मित्र को संबोधने के लिए वहां मध्यलोक में आ सकता है और उस त्रियंच को जगा सकता है, सम्यक दर्शन धारण करा सकता है। सम्यक दर्शन धारण कराने का काम तो देवलोक कर रहे हैं, तो मुनि महाराजों को जाने की क्या जरूरत है? मुनि महाराज का काम अलग है। मुनि महाराज किसकी ओर देखते हैं? उसकी ओर देखते हैं जो संयमी बनना चाहता है, उनकी दृष्टि संयमियों पर जाती है। सम्यक दृष्टि बनना चाहता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, सम्यक दर्शन धारण कर रहे हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ ठीक है, ये कोई व्रत नहीं होता, श्रद्धा जगाई जाती है। केवल श्रद्धा जगाने के लिए संकल्प नहीं चाहिए पड़ता। कोई पंच पापों से इतने पाप छोड़ने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसी कोई विधि नहीं है। अतत्व श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का जो विपरीत धारणा थी, उस विपरीत धारणा को पलटा करके सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करने का काम, तो ये कोई व्रत नहीं कहलाता, एक मानसिक परिवर्तन कहलाता है। ये संयम नहीं कहलाता। सम्यक तो को संयम नहीं कहा। संयम संकल्प से उत्पन्न होता है, सम्यक तो श्रद्धा से उत्पन्न होता है। संयम के लिए क्या चाहिए? संकल्प। किसका संकल्प? पंच पापों का एक देश त्याग या संपूर्ण त्याग, ये संकल्प व्रत कहलाता है। इसको दीक्षा भी कहते हैं। संकल्प पूर्वक वस्तु को त्यागना ये दीक्षा है। पर संकल्प पूर्वक श्रद्धा की जाती है क्या? श्रद्धा तो हो जाती है, ये परिणमन वाला कार्य है, मन परिवर्तन का कार्य है। ये पहली ऐसी धारणा थी, अब ऐसी धारणा है, ये परिवर्तन कहलाता है। तो धारणा ये टूट करके धारणा ये बन गई, ये श्रद्धा का काम है। वहां से श्रद्धा उठी और इधर श्रद्धा लग गई, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को कोई भी दे सकता है, लेकिन संयम को हर कोई नहीं दे सकता। उसको देने का अधिकारी केवल जो संयमी हैं स्वयं, जिसकी दुकान में संयम है, हाँ उसी की दुकान में जाकर के संयम को लेओगे। कि जिसकी दुकान में संयम है ही नहीं, वहां से संयम खरीदोगे? जिसकी दुकान में सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन दे, बेचे आप अपना सम्यक दर्शन। अधिकारी हो, फुल अधिकार है आपको। सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि बनाओ, बेचो सम्यक दर्शन को, रत्न को, खूब व्यापार करो। आपको सम्यक दर्शन देने का अधिकार है, संयम देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आपके दुकान में है ही नहीं, क्या बेचोगे? खाली हाथ से कहोगे क्या, ये लो संयम? तो हाथ में तो देने लेने वाले के हाथ में कुछ आया ही नहीं। यहां संयम होना चाहिए, तब हम दूसरे को भी संयम दे सकते हैं। यहां सम्यक दर्शन होना चाहिए तो हम दूसरे को भी सम्यक दर्शन दे सकते हैं। जो जिस वस्तु का जो मालिक है, उसी वस्तु को वो बेच सकता है। जिसके पास जो है ही नहीं, उसको क्यों बेचेगा? तो भोग भूमि में मुनि क्यों नहीं जाते? इसका उत्तर ये है, वहां पर संयम लेने वाला कोई है ही नहीं, तो हम वहां क्यों जाएं? सम्यक दर्शन देने के लिए नहीं। देखो कल की बात जरा याद करो, भगवान के समो शरण में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं रहते, ये पक्ष ठीक लगता है। क्योंकि भगवान आपको सम्यक दर्शन पैदा करने के लिए नहीं बैठे, भगवान आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने के लिए नहीं बैठे, भगवान का वो काम है भी नहीं। श्रद्धा, मैं भगवान हूं, तुम मेरी श्रद्धा ऊपर श्रद्धान करो, ये कहेंगे क्या भगवान? हाँ, मैं भगवान हूं, 18 दोषों से मुक्त हूं, मेरे ऊपर श्रद्धान करो, ये कहेंगे क्या? नहीं। श्रद्धा की परिणति, वो श्रद्धा यहां उत्पन्न नहीं होती, वो श्रद्धा भगवान के प्रति तो श्रद्धा बाहर ही उत्पन्न होती है, मानस स्तंभ को देखकर, इनके बिंब को देखकर के श्रद्धा आएगी। हाँ, पहले कैमरा नहीं थे, फोटो नहीं थे चतुर्थ काल में, पेंटर एक चित्र निकालता था, कन्या का चित्र निकाल दिया और उस देश में भेज दिया, तो राजकुमार साहब सब देखने लगे देखो कैसी शादी होती थी पहले, आज मोबाइल पर हो रही है महाराज आपको कैसे मालूम, मुझे सब मालूम चलता है इंटरनेट पर। श्रद्धा कैसे होती है देखो, आज तो ओरिजिनल स्वरूप दिखता है, चेहरा वहां का यहां दिख सकता है। उस समय ऐसा कोई साधन ही नहीं था, चतुर्थ काल में एक पेंटर बिठा करके चित्र निकालता था और उसको जिस देश में भेजना है भेज देता था और वहां रखा जाता था, सभी लोग आकर के राजकुमार देखते थे। उसमें से जिसको श्रद्धा उमड़ी सम्यक दर्शन हो गया मिलना तो बाद में होगा अरहंत से मिलना तो बाद में होता है, पहले चित्र को ही देख करके श्रद्धा आती है, मानो उस विषय को। आचार्य ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि जीव समूह शरण में सभी सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, वहां बैठ करके सभा में बैठ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव वहां नहीं है। भगवान को देख करके क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भगवान के चित्र को देख करके श्रद्धा उमड़ेगी श्रद्धा बनेगी। यहाँ आने के बाद तो आचरण के लिए आता है वो, यह मोक्ष मार्ग पाप से मुक्त होने वाला मार्ग है, इस पाप से कैसे मुक्त हो जाऊं इस बुद्धि से समूह शरण में प्रवेश होता है। समूह शरण में आने के बाद पंच पापों से मुक्त कैसे होना इसकी शिक्षा मिलती है, वहां श्रद्धा अर्धा करते बैठो ये नहीं है। श्रद्धा जिसको हो चुकी है वो उसका वहां प्रवेश है, मतलब सम्यक दर्शन पासपोर्ट उसको लेकर के ही अंदर आना पड़ेगा वहां। भगवान के पास जाने का अधिकारी कौन, तो सम्यक दृष्टि जिसकी भूमिका बन चुकी है वह, और उस भूमिका को बनाने वाले वहां बहुत सारे बैठे हैं, देवलोग बैठे हैं, उपवन में बैठे हैं, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि देव जीव संबोध रहा है, ये सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो, तुम यहाँ आ गए काय के लिए भटक रहे हो चतुर्गति में, चतुर्गति कोई सुखदायी नहीं है। ये संबोधन देवलोग देवों को दे रहे हैं, देवलोग मनुष्यों को भी दे रहे हैं, देवलोग त्रिंश को भी दे रहे हैं। सम्यक दर्शन पैदा कराने के साधन बाहर बहुत सारे हैं, अगर कोई करा नहीं पाया तो लास्ट में सीढ़ी चढ़कर आने के बाद दरवाजे में प्रवेश होने के बाद समूह शरण में मानस स्तंभ है, मानस स्तंभ को देख लेता है। लोग समझा रहे थे सम्यक दर्शन धारण करो, भगवान वीतरागी होते उन पर श्रद्धान करो, हाँ समझ में तो आता है वीतरागी होते, वीतराग क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है, कम से कम दिखाओ तो सही, तो जाओ जाओ सीढ़ी चढ़ो जाओ दरवाजे में, तो मानस स्तंभ को देखो, तो मानस स्तंभ में भगवान का चित्र प्रतिमा लगी हुई, प्रतिमा को चित्र को, तो इसको देख करके श्रद्धा आएगी। जो उस वीतराग मुद्रा को देख करके मन परिवर्तन कर लिया वो समूह शरण में जाने का अधिकारी हो गया। श्रद्धा पहले होती है और भगवान बाद में दिखते हैं, ये नैसर्गिक बात है। देखो हमारे लिए भी भगवान बाद में दिखते हैं या सम्यक दर्शन पहला होता है, हमारी आत्मा भगवान बनना चाहती, भगवान पहला बनता है क्या सम्यक दर्शन पहले होता है, हाँ सम्यक दर्शन पहले होता है, तो हम भी तो यही तो कल्पना कर रहे हैं आत्मा को लेकर के, आत्मा भगवत स्वरूप है, उसको देखना है, उसको देखना है, उसको देखना, श्रद्धा तो है, ये श्रद्धा सम्यक दर्शन है। और भगवान, आत्मा भगवान, भगवान के रूप में कब दिखा? बाद में ही दिखा ना, सम्यक दर्शन के बाद में ही दिखा ना। हाँ, गौतम गंधर्व का उदाहरण बिल्कुल फिट है वो, उनको सम्यक दर्शन मानस स्तंभ को देखने से हुआ, बाद में चले गए अंदर, अंदर गए तो क्या प्राप्त किया? बाहर सम्यक दर्शन, पासपोर्ट मिल गया, उसके आधार से प्रवेश मिला और सम्यक दर्शन हो गया। दो दृष्टियां हैं, समोशरण की सभा में मिथ्या दृष्टि जीव होते नहीं होते, दोनों दृष्टियां हैं। उसमें अधिक से अधिक उचित लगता है नहीं होते, यही उचित लगता है। ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि समोशरण सभा में बैठे मनुष्य ने पहले गुणस्थान से एक साथ सातवें गुणस्थान को प्राप्त किया? हाँ, ये उदाहरण उस शास्त्र में मिल सकते हैं जिस शास्त्र में ये मान्यता है कि समोशरण सभा में मिथ्यात्वी जीव होते हैं। उस शास्त्र के अनुसार तो ऐसे उदाहरण मिलना संभव है, ढूंढे तो वहां मिल सकते हैं, लेकिन जिस शास्त्र में ये दृष्टि दी है कि समोशरण सभा में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते, उस शास्त्र में कैसे मिलेगा उदाहरण कि प्रथम गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान में कोई व्यक्ति जाता हो, प्राप्त कर सकता हो उस गुणस्थान को? नहीं मिलेगा उसमें, उसमें तो नहीं मिलेगा, ये निश्चित बात है। उस शास्त्र में ढूंढेंगे ना, क्योंकि उन्होंने पहली दृष्टि दे दी है, दे करके ही शास्त्र लिखेंगे ना, तो पहले कुछ लिखा बाद में कुछ लिखा ऐसा नहीं होगा, और उसमें भी पहले कुछ लिखा बाद में कुछ लिखा ऐसा नहीं होगा। यदि ये दृष्टि दी है कि समोशरण के सभा में मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, तो फिर पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाने वालों का भी उदाहरण वहां मिल सकता है। तो इसको उसी उसी दृष्टि से ढूंढ करके देखना पड़ेगा, लेकिन उचित तो यही लगता है। भगवान का ये काम नहीं है कि भव्य जीवों को सम्यक दर्शन का टिकट देते हुए बैठे। सम्यक दर्शन का टिकट तो हर कोई दे रहा है, वहां से ले लो ना, तुम संयम नहीं ले सकते हो उनसे, इसलिए अंदर आओ, यहां से संयम ले लो, संयम का टिकट भगवान देंगे। नहीं समझे? संयम का टिकट भगवान देंगे, संयमी देंगे। सम्यक दर्शन आप कभी भी कहीं भी तीन लोक में किसी भी गति में रहते हो, प्राप्त करके आ जाओ, प्राप्त करके यहां पर निकल आओ। हाँ, नहीं, शुरुआत में उसको जब वहां गया था मिथ्या दृष्टि ही था, ऐसा नहीं कह सकते उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, क्योंकि दिगंबर मुनि दीक्षा को भी उसने ले लिया था, उस काल में कोई ज्ञान तो था नहीं विशेष, और भगवान जो करते थे उस पर श्रद्धा से ही सब कुछ करते थे। 4000 लोग, राजा लोगों ने भी दीक्षा ली, बाद में छोड़ा, कई चुत हो गए, कुछ बच गए और बहुत सारे च्युत हो गए। 4000 राजा लोग दीक्षा भी लिया और च्युत भी हो गए। काल ऐसा था वो, वहां पर धर्म क्या है ये पता ही नहीं था किसी को, आज पता है, इतना भी पता नहीं था। हाँ, तो वहां पर मरीच का जो जीव था, हो सकता आदिनाथ भगवान राजकुमार अवस्था में रहते हैं उनको भी देख करके सम्यक दर्शन हो सकता है कि तीर्थंकर बनने वाला जीव है कह करके। और आदिनाथ भगवान ने जब उपदेश दिया श्रवण धर्म का और श्रावक धर्म का, तो उस उपदेश को सुन करके सम्यक दर्शन क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? हो गया, लेकिन पहली बार हो रहा है। पहली बार होने वाला सम्यक दर्शन ज्यादा टिकता नहीं, पुनः नष्ट भी हो चुका हो, ऐसा हो सकता है। नष्ट होने के बाद बुद्धि में विकार आया और वो मरीची बन करके यहाँ तक परिभ्रमण किए, ऐसा भी हो सकता है। टाइम बहुत हो गया। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।
श्रद्धा में मतलब उनके साथ वहाँ पर जाकर के सही मिलेगी वो कहने के बाद।